जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद आज हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत से मध्य लीला के अध्याय 9 का 3 श्लोक 3 प्यार के ऊपर चर्चा करेंगे 77, 78 और 79। देवस्थाने आसी कैल विष्णु दर्शन श्री वैष्णवेर संगे तहां गोष्ठी अनुक्षण। देवस्थान आकर चैतन्य महाप्रभु ने भगवान विष्णु का मंदिर देखा और वहां रामानुजाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा के वैष्णवों से बातें की। ये वैष्णव श्री वैष्णव कहलाते हैं। प्यार संख्या 78। कुंभकर्ण कपाल देखी सरोवर शिव क्षेत्र शिव देखे गौरांग सुंदर। कुंभकर्ण कपाल आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक विशाल सरोवर देखा और फिर शिव क्षेत्र नामक पवित्र स्थान देखा जहाँ पर शिव जी का मंदिर है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की है। कुंभकर्ण रावण का भाई का नाम है। आजकल कुंभकर्ण कपाल का शहर कुंभकोणम के नाम से जाना जाता है। कुंभकोणम तंजौर शहर से 24 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ पर शिव जी के 12, विष्णु के 4, ब्रह्मा जी का 1 मंदिर है। शिव क्षेत्र तंजौर शहर के भीतर शिव गंगा नामक विशाल सरोवर के तट पर स्थित है। यहाँ पर शिव जी का एक बड़ा मंदिर बृहतीश्वर शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। प्यार संख्या 79। पापनाशन विष्णु कैल दर्शन श्रीरंग क्षेत्र तबे करिला गमन। पापनाशन विष्णु कैल दर्शन श्रीरंग क्षेत्र तबे करिला गमन। अपना सने विष्णु कैला दर्शन श्रीरंग क्षेत्र तबे करिला गमन। शब्दार्थ अपना सने पापनाशक स्थान में विष्णु भगवान विष्णु का कैला किया दर्शन। दर्शन श्रीरंग क्षेत्र नामक पावन स्थान में तब करिला किया गमन प्रस्थान। अनुवाद तात्पर्य शिव क्षेत्र नामक तीर्थ देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु पापनाशन आए जहाँ उन्होंने भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन किए। अंत में वे श्रीरंग क्षेत्र पहुँचे। तात्पर्य पापनाशन नाम के 2 तीर्थ स्थान हैं। एक कुंभकोणम से 8 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है और दूसरा तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के निकट तिरुनेलवेली पालमकोटा शहर से 20 मील पश्चिम में है। श्रीरंग क्षेत्र श्रीरंगम अत्यंत प्रसिद्ध स्थान है। यह तिरुचिरापल्ली जिले में कुंभकोणम के पश्चिम में लगभग 10 मील दूर और तिरुचिरापल्ली शहर के निकट कावेरी नदी के एक द्वीप में स्थित है। श्रीरंगम मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है और यह 7 प्रकोटों से घिरा है। श्रीरंगम तक 7 मार्ग भी जाते हैं। इनके प्राचीन नाम हैं धर्म मार्ग, राज महेंद्र मार्ग, कुल शेखर मार्ग, अली नाडन मार्ग, तिरुविक्रम मार्ग, माड़माड़ी गाइस का तिरुपिड़ी मार्ग तथा अड़ैयावल इंदान मार्ग। इस मंदिर की स्थापना धर्म वर्मा के राज्यकाल से भी पूर्व की गई थी। यह राजा राज महेंद्र से भी पहले राज्य करता था। श्री रंगम मंदिर में कई विख्यात राजा रह चुके हैं, जैसे कुलशेखर, जमुनाचार्य अर्थात आल बंदारू आदि, जामुनाचार्य, श्री रामानुज, सुदर्शन आचार्य तथा अन्यों ने भी इस मंदिर की देखभाल की है। लक्ष्मी के अवतार गोड़ा देवी या अंडाल 12 अलवरों में से एक थी। अलवर मुक्त पुरुष थे और दिव्य सूरी कहलाते थे। उनका विवाह श्री रंगनाथ के अच्छा विग्रह से हुआ था। बाद में वे भगवान के शरीर में प्रविष्ट कर गई। कार्मुक के अवतार तिरुमंग अलवारों में से एक ने चोरी से कुछ धन प्राप्त करके श्री रंगम की चौथी चहार दीवारी बनवा दी। कहा जाता है कि 289 कली संवत्सर में तोंडर डिप्पटी नामक अलवार का जन्म हुआ। जब ये भक्ति में लगे थे तो एक वेश्या के जाल में फंस गए। अपने भक्त को इतना पतित हुआ देखकर श्री रंगनाथ ने अपने नौकर के हाथ उस वेश्या के पास एक सोने का थाल भेजा। जब मंदिर में सोने की थाल की खोज की गई तो वह वेश्या के घर में पाया गया। जब भक्त ने उस वेश्या पर रंगनाथ की कृपा देखी तो उसकी भूल सुधार ली गई। तब उसने रंगनाथ मंदिर की तीसरी चार दीवारी बनवाई और वहाँ पर तुलसी का बगीचा लगा दिया। रामानुजाचार्य का एक विख्यात शिष्य कुरेश था। इनका पुत्र राम पिल्लाई था, जिसका पुत्र बाघ विजय भट्ट हुआ, जिसका पुत्र वेद व्यास भट्ट या श्री सुदर्शन आचार्य हुए। जब सुदर्शन आचार्य बूढ़े हो गए तब मुसलमानों ने रंगनाथ के मंदिर पर हमला कर दिया और लगभग 1200 श्री वैष्णवों को मार डाला। उस समय रंगनाथ के अच्छा विग्रह को विजयनगर राज्य के तिरुपति मंदिर में ले जाया गया। गिंगी के गवर्नर गोपणार्य श्री रंगनाथ को तिरुपति मंदिर से सिंह ब्रह्म नामक स्थान में ले आए, जहां वे 3 वर्ष तक रहे। 1293 शक संबत 1371 ईस्वी में अर्चा विग्रह को पुनः रंगनाथ मंदिर में स्थापित कर दिया गया। रंगनाथ मंदिर के पूर्वी दीवाल में वेदांत देशिक द्वारा लिखित एक लेख है, जिसमें बतलाया गया है कि किस प्रकार रंगनाथ इस मंदिर में वापस आए। श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं संन्यास लेने के बाद। जैसा कि हम जानते हैं कि संन्यास के उपरांत 6 वर्ष तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा की। भक्तिनाथ ठाकुर भक्ति के अनुकूल अपनी किताब शरणागति में उन वस्तुओं का वर्णन करते हैं जो भक्ति के अनुकूल है। उसमें एक वस्तु है कि गौर आमार जे सब स्थान करिल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिब आमी प्रणय भकत संगे। जिन जिन स्थानों में हमारे गौरांग महाप्रभु आनंद पूर्वक भ्रमण किए, अपने चरण कमलों को रखा, उन स्थानों में मैं प्रेमी भक्तों के साथ भ्रमण करूं, तो ये भक्ति का अनुकूल है ना। शरणागति पुस्तक में भक्तिविनोद ठाकुर ने उन बातों का वर्णन किया है। उन शरणागति के 6 जो अंग हैं उसका वर्णन किया है, जिसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए शरणागति सिखाने के लिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद श्रिय धाम सहाय अवतारी। जय श्री श्री राधिका रमन भगवान की जय। श्री नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। श्री गौर निताय की जय। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाए शरणागति भकतेर प्राण। धन्य आत्म निवेदन गोत्रित्वे वरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। भक्तिर अनुकूल मात्र कार्यर स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। षडंग शरणागति होइबे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो इसमें बताते हैं कि षडंग शरणागति होइबे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में भगवद गीता सुनाया, भगवद गीता का ज्ञान दिए, जो समस्त वैदिक शास्त्रों का सार है। और उस भगवद गीता का जो सार है, भगवद गीता जो है फिलॉसफी है, कंडेंस फिलॉसफी, जितनी जो सिद्धांत है उन सबको एक जगह भगवान ने गीता के रूप में प्रस्तुत किया। और फिर गीता के सार को एक श्लोक में प्रस्तुत किया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम त्वां स्वरूपाभ्यो मोक्षयिष्यामि मा च सुजा। तो ये जो श्लोक है ना, ये समस्त वैदिक शास्त्रों का कंक्लूजन है, शरणागति। तो जितने सिद्धांत जो संबंध ज्ञान है, संबंध अभिधेय और प्रयोजन, तीन तत्व बताया गया है वैदिक शास्त्रों में। और संबंध ज्ञान का जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन होता है शरणागति में जाकर। वैदिक शास्त्र को जो पूरी तरह से समझ लेता है तो वो भगवान कृष्ण की शरणागति करता है। और जो शरणागत कर गया कृष्ण को, इसका मतलब उसने वैदिक शास्त्रों को समझ लिया है। उससे बढ़ के कोई सिद्धांत नहीं है, उससे बढ़ के कोई तत्व नहीं है। सारे तत्वों का जो निष्कर्ष है वो है शरणागत धर्म। इसीलिए गीता के अंत में भगवान ने शरणागति को ही अंतिम लक्ष्य बताया है साधकों के लिए। और शुद्ध भक्ति का फाउंडेशन जो है वो शरणागति पर ही रखा जाता है। जहां शरणागति नहीं है वहां शुद्ध भक्ति प्रकट नहीं हो सकती है। और उसी शरणागति को जो भगवान कृष्ण ने निष्कर्ष निकाल कर दिया, उसी शरणागति को सिखाने के लिए दोबारा भगवान कृष्ण प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। क्योंकि जब तक शरणागति नहीं है तब तक प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। बिना शरणागति के प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। शरणागति रूपी पात्र में प्रेम रूपी अमृत को रखा जाता है। प्रेम एक ऐसा अमृत है जिसको जिसके लिए एक उपयुक्त पात्र होना चाहिए। तो पात्र जो है वो शरणागति है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको प्रेम का वितरण किया, सब लोगों को प्रेम प्रदान किए। लेकिन प्रेम जब दे रहे थे, बांट रहे थे, तो महाप्रभु ने ये नहीं देखा कि कौन पात्र है और कौन कुपात्र है। सबको प्रेम दे रहे थे, लेकिन जब दे रहे थे तो आपको लेने के लिए आपके पास बर्तन होना चाहिए, है ना। बर्तन आपको कोई मैं पानी दे रहा हूँ तो पानी ऐसे कहाँ लेंगे, बर्तन होना चाहिए, है कि नहीं? उसी को पात्र कहते हैं ना, पात्र मतलब बर्तन। मर्सी होल्डिंग कैपेसिटी, तो मर्सी को होल्ड कैसे करेंगे हम? मर्सी तो मिलेगा, उसको होल्ड करना पड़ेगा, उसके लिए एक बर्तन होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जब दे बांट रहे थे प्रेम, तो उन्होंने देखा कि बर्तन तो है ही नहीं इनके पास, तो कैसे दूंगा प्रेम। तो इसलिए महाप्रभु क्या किए, पहले एक कॉलेज खोल दिए, उसमें पहले बर्तन कैसे बनाना है वो सिखाए। या आप तो सब अपना अपना बर्तन पहले तैयार कीजिए, तो प्रेम के कॉलेज में एडमिशन के लिए पहले आपके पास एक बर्तन होना चाहिए। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु जो कॉलेज खोला, उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सब लोग आइए, लेकिन आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, सिखाए शरणागति, सिखाए का अर्थ ही होता है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देंगे कि कैसे शरणागत होना है, तो यही पात्रता है, वही कॉलेज है इस्कॉन, जहाँ पे कोई भी आ सकता है, हर व्यक्ति का स्वागत है इस्कॉन में, क्योंकि यहाँ पर सिखाया जाता है कैसे शरणागत होना है। और यही लक्ष्य है, इस्कॉन में रहते हुए हम सबको एक ही ध्येय होना चाहिए कि हमारे को डिग्री मिलेगा किस दिन, जब हम शरणागत के लक्षणों को समझ लेंगे और प्रकट कर लेंगे, उस दिन मतलब बर्तन तैयार हो गया, फिर प्रेम। इसलिए अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, प्रेम को दान करना चाहते हैं, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम, जो कि ब्रह्मा और शिव के लिए भी दुर्लभ है जो प्रेम, वो प्रेम को देने के लिए पात्रता। तो पात्रता नहीं है जिसको, तो पहले कुपात्र को भी पात्र बनाते हैं, पहले अनक्वालिफाइड को शरणागति सिखा के ही मेक्स देम क्वालिफाइड, उनको क्वालिफाइड पात्र बनाते हैं, और फिर उनको प्रेम प्रदान करते हैं। जो पहले से पात्र हैं उनको डायरेक्ट प्रेम दे सकते हैं, जिनके पास पात्रता नहीं है उनको पात्र बनाकर फिर प्रेम, तो वो क्वालिफिकेशन शरणागति है। और शरणागति जो है वो छह अंग हैं, दैन्य, आत्मनिवेदन, गोपतृत्ववरण, अवश्य रक्षवे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति रनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव भजन अंगीकार। तो सबसे पहला जो शरणागति का लक्षण है वो दैन्य, दैन्य का मतलब है हेल्पलेसनेस, हेल्पलेस महसूस करना अपने आप को। जिस प्रकार से गजेंद्र ने अपने को हेल्पलेस महसूस किया, जिस प्रकार से द्रौपदी ने अपने को हेल्पलेस फील किया, उसी प्रकार से कातर भाव से, आर्त भाव से जब एक जीव जब देखता है कि मेरा और कोई सहारा नहीं है केवल भगवान को छोड़ के, तो इस बात को महसूस कर लेता है, तो उसके हृदय के अंतःकरण से एक आर्त नाद निकलता है, आर्त नाद, जो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अनादि कराम फले पड़ी भावरणमा जाले हाब दुबु खाई को तो काल सातरी सातरी जाए सिंधु अंत नहीं पाए भव सिंधु अनंत विशाल निमग्न होइनु जबे डाकिनु कातर रवे केहु मोरे करो हो उधार। तो कहते हैं कि इस अनादि काल से इस संसार समुद्र में डूबते 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 प्रयास करते कब इस संसार समुद्र का अंत किनारे पर पहुंचूंगा मैं, प्रयास करते करते अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले, भव सागर में गिरा हुआ जीव डूबता है उतराता है, हाबू दुबू खाई को तो काल। कितने काल से ये कर रहा है कोई उसकी गणना नहीं है। और निमग्न हो जब डाकिनो कातर रोवे, जब डूबने लगा मैं डूबने लगा तो फिर डूबते समय कातर भाव से चिल्लाया, डाकिनो मतलब चिल्लाया, कोई है जो मेरा उद्धार करेगा, केहो मोरे करो हो उद्धार, कोई आइए कोई आकर मेरा उद्धार कीजिए, मुझे बचाइए, इस समुद्र डूबने से बचा लीजिए। तो उस समय भगवान जो हैं वो फिर उसके कातर पुकार को सुनकर उसके पास सहायता भेजते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कातर भाव से भगवान को पुकारता नहीं है, भगवान उसके पास सहायता नहीं भेजेंगे। तो यही जो कातर भाव से भगवान को पुकारना कि हे भगवान मैं आपसे दूर होकर इस संसार में आया और आकर फंस गया, अपनी मूर्खता के कारण मैं इस संसार में आकर फंस गया और फिर नाना प्रकार के दुख झेल रहा हूँ, ये दयनीय है। और यहाँ से ये जो फीलिंग है यहाँ से भक्ति की प्रारंभ होता है। जब तक ये फीलिंग नहीं है डिवोटी के अंदर, प्रैक्टिसिंग साधक के अंदर, तब तक जेन्युइन डिवोशन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये फाउंडेशन है प्योर डिवोशन का, इसलिए जेन्युइन क्राई ऑफ ए चाइल्ड फॉर इट्स मदर, जेन्युइन डिवोशन का अर्थ यही है। भूलिया तो मारे संसारे आसिया पे नाना विधा व्यथा, तुम्हार चरणे न भजिनु कभू कहिबो दुखेर कथा। दुख महसूस करने के बाद जब दुख महसूस होता है हृदय में तब भगवान के सामने जाकर उस दुख को व्यक्त किया जा सकता है। तो भगवान जो है उस आर्त भाव को देखकर, जब कोई आर्त भाव से कातर भाव से भगवान को पुकारता है जेन्युइन हार्ट से, तो भगवान जो है उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है कि कोई कातर हृदय से आर्त भाव से भगवान को पुकारे और भगवान उसको इग्नोर कर दे, ये संभव नहीं है। और वहां से भगवान जो है वो उसको फिर आगे बढ़ाते। तो उसी शरणागति में एक जो अंग है वो है कि भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति के अनुकूल कार्यों को स्वीकार करना। तो कई बार हम भक्ति में जुड़ तो जाते हैं, भक्ति में जुड़ना भी आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिन यतति सिद्धये, हजारों में कोई एक होगा भाग्यशाली व्यक्ति जो भक्ति में जुड़ता है। मुझे लगता है कि आईएएस एग्जाम से भी काफी टफ है ये, सिविल सर्विसेज में भी अगर 5 लाख लोग बैठते हैं उसमें से 1000 सेलेक्ट होते हैं, है कि नहीं? तो अगर रेशियो देखा जाए तो कितना हो गया, 1:500, लेकिन भगवान कह रहे 1:1000, है कि नहीं? हजारों में एक, मतलब क्या 1:1000 हजारों में एक, तो आईएएस से भी टफ एग्जाम है, स्क्रीनिंग बहुत टफ है, तो ये पीटी में होगा, ये पीटी, उसके बाद फिर मेंस होगा। कहते हैं कि यतताम अपि सिद्धानां, जो पीटी में क्वालिफाई करते हैं फिर वैसे यतताम मतलब जो यत्न करते हैं फिर उनमें भी यत्ताम अपि सिद्धानां कश्चिन मामेति तत्त्वतः, उनमें भी कोई एक मुझे एक्सेप्ट कर प्राप्त कर पाएगा। तो क्या है इतना टफ, क्यों है ना, क्योंकि कुछ जब भक्ति को में आने के बाद भी उसको मेंटेन करना बहुत कठिन है ना, कैसे मेंटेन करके रखा जाए उस कॉन्शियसनेस को, दैट इज टफ। और उससे भी ज़्यादा टफ है एडवांस करना, भक्ति में आगे बढ़ें, जिस लेवल पे हैं उसे आगे बढ़ते जाएं, उत्तरोत्तर भक्ति में प्रगति होती जाए, वो और भी कठिन है। तो भक्ति में प्रगति के लिए क्या उपाय है, तो बताए कि भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, केवल उन्हीं कार्यों को करना चाहिए जो भक्ति के अनुकूल है, और भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, जो भाव भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग देना चाहिए। ये शरणागति का लक्षण है। तो भक्ति के प्रतिकूल क्या क्या है, कई आइटम्स हैं जो श्रील रूप गोस्वामी ने भी वर्णन किया है ना, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघस्य लौल्यंस्य षड्भिः भक्ति विनश्यति, ये भक्ति के प्रतिकूल कार्य हैं। और पाचो बेगम मनसः क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम, ये सब भक्ति के प्रतिकूल है, इनको भी नियंत्रित करना, इनको कंट्रोल करना। और अनुकूल भी चीज़ें हैं, तो अनुकूल जो चीज़ें हैं उनको बड़ी सावधानी से पालन करना चाहिए, तो उससे क्या होता है कृष्ण से आसक्ति बढ़ेगी। तो उसी अनुकूल वस्तुओं का वर्णन करते हैं ना, तो जो की लिस्ट बताते हैं भक्तिनाथ ठाकुर कौन कौन सी चीज़ें भक्ति के अनुकूल है, तो ये शरणागति के एक गीत में बताते हैं कि ना, तो सबसे फर्स्ट जो भक्ति के अनुकूल चीज़ है जिसे सबसे ज़्यादा आपको भक्ति में एडवांसमेंट हो सकता है वो क्या है, शुद्ध भाकत चरण रेणु भजन अनुकूल भकत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। तो जो पहला आइटम जो बता रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो फर्स्ट प्रायोरिटी दिया श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने वो क्या है, शुद्ध भक्तों के चरणों की रेणु, रेणु मतलब धूल, वो भजन अनुकूल, भजन के लिए अनुकूल आइटम है सबसे फर्स्ट आइटम, शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तीन प्रकार के महाबल, जैसे महामंत्र है उसी तरह से महाबल, क्या क्या है, भक्त पद धूली भक्त पद जल भक्त भूत उच्छिष्ट, तीन महाबल, भक्तों के चरणों की धूली, भक्तों के चरणों का जल और भक्तों का पाया हुआ महाप्रसाद, ये तीन महाबल हैं ना, मतलब बहुत पावरफुल आइटम है जिसको प्राप्त करके व्यक्ति भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। और इसका उल्टा भी है, तेजी से अगर किसी को गिरना है तो उसके लिए यही तरीका है, सबसे फास्ट तेजी से अगर मेरे को गिरना है भक्ति में तो क्या तरीका है, कि भक्तों के प्रति दुर्भावना रखना। अगर किसी को बहुत जल्दी सोचना है बहुत मैं फंस गया हूँ भक्ति में आकर और मेरे को भक्ति से मुक्ति चाहिए तो उसके लिए जो टेक्निक है वो यही है, फर्स्ट टेक्निक यही है, बेस्ट टेक्निक और क्विकेस्ट और फास्टेस्ट मेथड टू गेट आउट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि शुद्ध भक्तों के चरणों में अपराध, उनके प्रति दुर्भावना रखना, उनके प्रति दुर्विचार रखना भक्तों के प्रति, है ना। बाकी सब स्लो प्रोसेस है गिरने का, पाप करेंगे तो तेजी से नहीं गिरेंगे, लेकिन अगर अपराध करेंगे तो दुर्भावना रखेंगे भक्तों के प्रति, भावना को भी प्योर करना पड़ता है, दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, भक्तों के अंदर दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए भक्तों के लिए। कई बार भक्त पूछते हैं कि दोष दृष्टि, दोष दिख रहा है तो कैसे ना देखें, दिख तो रहा है ना, स्पष्ट दिख रहा है मेरे को, उसके बावजूद कैसे हम ना कैसे मना करें, अपने माइंड को कैसे मनाएं, कैसे समझाएं उसको कि तो दोष स्पष्ट दिख रहा है। तो जैसे हम वृंदावन जाते हैं, है ना, वृंदावन जाते हैं तो जब जमुना जी के किनारे आप जाइए, जमुना जी में है ना कितनी गंदगी दिखती है ना, लेकिन फिर भी हम लोग उस पानी को आचमन करते हैं, है कि नहीं। दिल्ली का सारा मसाला उसमें जाता है कि नहीं, लेकिन हम जाते हैं प्रणाम करते हैं जमुना जी को, और प्रणाम करके उसमें नहाते भी हैं और आचमन भी करते हैं, है कि नहीं। क्यों, तो गंदगी दिख रहा है, स्पष्ट स्पष्ट दिख रहा है ना गंदगी, है कि नहीं, फिर क्यों आचमन करते हैं, कहते हैं प्रभु जी क्या कर रहे हैं आप, स्पष्ट दिख रहा है गंदगी है, फिर क्यों कैसे आचमन करते हैं, प्रणाम क्यों करते हैं, क्योंकि हम जमुना जी को शास्त्र की आंखों से देखते हैं, है ना, इन आंखों से नहीं, शास्त्र की आंखों से। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि जिस तरह से गंगा में कीचड़ दिखता है उसके बावजूद गंगा पवित्र होती है शास्त्र के अनुसार, उसी प्रकार से भक्तों के व्यवहार में दोष दिख सकता है किंतु फिर भी उनकी महिमा में कोई कमी नहीं आती, कोई कमी नहीं है महिमा में। कैसे, अभी देखिए तात्पर्य में बताया था, अभी बताया ना तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, कि कहा जाता है कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना कि 289 कलि संवत्सर में तोंडर डीपीडी, तोंडर याद रखिएगा, तोंडर डीपीडी नामक एक अलवार का जन्म हुआ, तोंडर डीपीडी अलवार, साउथ इंडिया का नाम है, थोड़ा टफ है ना, और ये भक्ति में लगे हुए थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब ये भक्ति में लगे थे तो एक वेश्या के जाल में फंस गए, अपने भक्त को इतना पतित हुआ देखकर श्री रंगनाथ ने अपने नौकर के हाथ उस वेश्या के पास एक सोने का थाल भेजा, किस लिए सोने का थाल भेजा, रंगनाथ जी ने सोने का थाल क्यों भेजा वेश्या के पास, भक्त को रिमाइंडर, सोने के थाल से कैसे रिमाइंडर मिलेगा, वेश्या के पास भेजे थे, सोने का थाल वेश्या के पास भेजे, पैसे के पीछे होती है, हाँ। तो कई भक्तों के मंतव्य हैं, क्योंकि स्पष्ट प्रभुपाद ने इसको एलाबोरेट नहीं किया है, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कई कारण होते हैं, क्योंकि भगवान के हर कार्य के कई कारण होते हैं इसको, और हर भक्त जो है अपने अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं, ना? तो ये भी एक कारण हो सकता है ना कि भगवान अपने भक्तों से कितना स्नेह करते हैं। तो देखिए कि वेश्या को, जो कि उसके पास सोने का थाल भेजा भगवान ने, क्योंकि वेश्या को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो भगवान जो है वो उसके पास पैसा भेज दिए और साथ ही साथ उसके साथ कृपा भी भेजे, क्योंकि उसने देखा रंग प्रभात दादा की, जब भक्त ने उस वेश्या पर रंगनाथ की कृपा देखी तो थाल भेजकर कृपा की उस वेश्या के ऊपर, तो उसको देखकर उसको बड़ा मतलब ग्लानि हुआ भक्त को, है ना, तो उसने अपनी भूल सुधार ली। तब उसने रंगनाथ मंदिर की तीसरी चार दीवारी बनवाई, उसके बाद उसने सेवा भी किया, है ना, चार दीवारी बनवाकर, और वहाँ पर तुलसी का बगीचा लगा दिया। तो भगवान जो है वो अपने भक्तों को जिस दृष्टि से देखते हैं, हमें भी भक्तों को उसी दृष्टि से देखने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें देखे कि ये किस दृष्टि से देखते हैं या मैं किस दृष्टि से देखता हूँ, मेरे को क्या दिखाई दे रहा है। हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि भगवान को कैसे, भगवान कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को, इस व्यक्ति को। अगर भगवान आएंगे तो कैसे सोचेंगे इस भक्त के बारे में, क्या सोचेंगे इस भक्त के बारे में, भगवान अगर जमुना जी के किनारे आएंगे, जमुना जी को देखेंगे तो कैसे व्यवहार करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जमुना को देखा, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने भगवान कृष्ण के लीला का दर्शन किया, उस दृष्टि से देखा उन्होंने। उसी तरह से भगवान जो है, तो भगवान जो है किस दृष्टि से देखते हैं संसार को, किस दृष्टि से देखते हैं अपने भक्तों को, वो भगवान गीता में बताते हैं। क्या, अभिचेत सुदुराचारो भजते मां अनन्य भाग साधु रेव से मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत दुराचारी है, दुराचारी सुदुराचार मतलब अच्छी तरह से दुराचारी है, इन्हें लगे अभिचेत दुराचारो नहीं बोल रहे हैं, करें सुदुराचार, बहुत दुराचारी है लेकिन भजते माम अनन्य भाव, तो उसको साधु रेव स मंतव्य। तो दोनों कैसे हो गया, दुराचारी भी है और साधु, दोनों बोल रहे हैं एक ही श्लोक में। तो कहने का अर्थ है, भगवान कहना चाहते हैं कि जो तुमको दुराचारी लगता है वो मेरे को, मैं साधु उसको मानता हूँ, ये कहने का कि संसार में लोग जो है, कुछ मेरे भक्त ऐसे होते हैं जो किसी कारण से दुराचरण करते हैं, है ना, जिसको एक सामान्य व्यक्ति देख सकता है कि ये बहुत बड़ा दुराचारी है, लेकिन मैं उसको साधु के रूप में देखता हूँ। क्यों, क्यों साधु के रूप में आप देखते हो अगर दुराचारी है तो? कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांति निगच्छति कौन ते तु पति जाना ही नमी भक्ता पुनस्यति। ये रीजन है वाई, वाई क्यों मैं उसको साधु देखता हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्षिप्रम मतलब बहुत जल्दी भवती बन जाता है धर्मात्मा, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सुधरने में। क्यों, क्योंकि भगवान की शरण ले चुका है, भगवान के द्वारा अनन्य भाग मतलब क्या कि किसी और की शरण नहीं लेता है, है ना, भगवान की ही शरण लेता है और किसी की शरण नहीं जाता है। अगर गलती भी करता है तो भगवान से यही कहता है कि हे प्रभु आप जो भी मेरे को दंड देना है दीजिए, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, है ना, जैसा भी हूँ पर आपका दास हूँ, है ना, आप चाहे मारेंगे पीटेंगे जैसे भी करेंगे, लेकिन आपकी शरण में ही रखिए मुझे, आपकी शरण में ही रहना चाहता हूँ मैं, और कहीं नहीं जाना चाहता। तो फिर भगवान उसको कहते हैं कि ऐसा भाव जिसके अंदर आ जाता है वो ज़्यादा दिन तक दुराचारी नहीं रह पाएगा, बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा, ऐसा भाव जिसके अंदर आ गया है ना, और फिर शांति को प्राप्त करेगा, शाश्वत शांति निगच्छति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, कभी नहीं होगा भक्त का विनाश, चाहे दुराचारी क्यों ना हो, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमें दुराचारी करना चाहिए, है ना। कई बार भक्त लोग सोचते हैं अच्छा ओ भगवान इतने दयालु हैं, इतने ज़्यादा दयालु हैं, अच्छा मैं तो सोच रहा था कि भगवान पिटाई कर देंगे, अब पता चल गया भगवान इतने दयालु हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं। यस, फिर भी भगवान दया करेंगे, ये बात सही है, ये बात सही है। लेकिन देखिए भगवान कितने दयालु हैं अगर वास्तव में समझ जाएंगे ना, तो हम ऐसा भाव प्रकट हो ही नहीं सकता कि जो भगवान इतने दयालु हैं ऐसे व्यक्ति के साथ हम कैसे धोखा कर सकते हैं, जो इतना दयालु है, इतना मर्सीफुल है, है ना। तो वास्तव में जो भगवान के चरित्र को, भगवान के भाव को जो समझ लेता है ना, वो फिर पाप कर ही नहीं सकता, गलत दुराचरण कर नहीं सकता, क्योंकि भगवान का भाव उसमें इतना प्रेम है, उस प्रेम को महसूस करने के कारण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो सिखा रहे हैं कि उन चीज़ों को स्वीकार करना जो भक्ति के अनुकूल है, उसमें एक जो चीज़ है आगे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इसी में कि गौर आमार जे सब स्थानों करिलो भ्रमण रंगे, कि श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे जिन जिन स्थानों में भ्रमण किए उन स्थानों में जाकर भ्रमण करना, भक्तों के साथ अकेले नहीं, कहते ना प्रणय भक्त संगे, और कैसे भक्तों के साथ, है ना, बहुत सावधान रहना चाहिए, एक चीज बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी भक्त के साथ बहुत दिन से, प्रभु जी हम लोग दो तीन चार ठीक अकेले नहीं जा सकते, दो तीन ब्रह्मचारी ले लेते हैं अपने ही मूड के और जाएंगे और थोड़ा उधर आराम से घूमेंगे फिरेंगे, नहीं, कैसे भक्तों के साथ, प्रणय भगत संगे, प्रणय मतलब बहुत घनिष्ठ प्रेम है जिनका भगवान के प्रति आकर्षण है, ऐसे भक्तों के साथ हमें जाना चाहिए भगवान के धाम, और उधर जाकर दर्शन करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के। तो उसी धाम में आज जो वर्णन है इस श्लोक में वो आ रहा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है जब संन्यास लेने के बाद, संन्यास लेने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति को ट्रैवल करना चाहिए ना। नित्यानंद प्रभु हम देखते हैं उन्होंने भी जब घर छोड़ा तो क्या किए, ट्रैवलिंग किए, 20 साल तक ट्रैवलिंग किए नित्यानंद प्रभु, पूरे भारत के तीर्थ स्थानों का भ्रमण किए, है ना। ये ट्रेडिशनल सिस्टम है वैदिक कल्चर में कि जब भी कोई व्यक्ति सन्यासी होता है तो उसका नाम है परिव्राजक आचार्य, है ना, कि वो ट्रैवलिंग आचार्य होगा, है ना, ट्रैवलिंग मॉन्क मेंडिकेट बनना है। तो यहाँ से सन्यासी जो है ट्रैवलिंग का, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से प्रस्तुत किए कि चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लिए तो उन्होंने भी क्या किए, ट्रैवलिंग किए, है ना, परिव्राजक आचार्य का रोल किए और अपने आचरण से शिक्षा दिए अपने आचार्य प्रभु जीवर से कहा कि हमको ट्रैवलिंग करना चाहिए सन्यास लेकर, ना। और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में जहाँ जहाँ गए वहाँ पर कृष्ण प्रेम का बीज डाल कर गए हैं, वो बीज जो है बहुत समय बहुत जल्दी फिर अंकुरित होने वाला है, ऑलरेडी अंकुरित हो रहा है, जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने बीज डाले हैं वो सारे अभी फल के रूप में प्रकट होंगे प्रभुपाद के इस मिशन में आने वाले समय में, उन स्थानों में बहुत सारे भक्त बनेंगे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो कौन कौन से स्थान पर आज के श्लोक में वर्णन हुआ चैतन्य महाप्रभु गए कहाँ कहाँ, करें देवस्थान आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान का विष्णु का मंदिर देखा, देवस्थान नामक स्थान पर आए, विष्णु के मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर आए और वहाँ पर रामानुजाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा के वैष्णवों से बातें की, वैष्णवों से चर्चा कर, ये वैष्णव श्री वैष्णव कहलाते हैं। तो महाप्रभु जब भी ट्रैवलिंग करते थे, हम देखते हैं कि कहीं भी जाते थे तो मंदिर में रुकते थे। अगर दुर्गा का मंदिर है तो दुर्गा के मंदिर में ही रुक जाएंगे, लेकिन मंदिर में ही रुकते थे, ऐसा देखा जाता है। शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, कहीं भी जाते थे, दर्शन करते थे और रुकते थे ना? और वैष्णव अगर कोई मिल जाए तो वैष्णव से चर्चा करते थे, नहीं देते थे, ये श्री संप्रदाय का वैष्णव है, इससे नहीं, ये हमारा गौड़ीय नहीं है। तो बता रहे कि श्री वैष्णव मिले, उनसे भी उन्होंने शास्त्र चर्चा की, उनसे भी कृष्ण कथा की है, उनसे भी चर्चा की है। और फिर कुंभकर्ण कपाल, जो कि अभी कुंभकोणम के नाम से प्रसिद्ध है, कुंभकोणम जो कि एस्ट्रोलॉजी के लिए भी काफ़ी फेमस है वो स्थान, एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि भृगु ऋषि ने वहीं पे एस्ट्रोलॉजिकल से, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बुक्स की रचना की उस स्थान पर, कुंभकोणम जो कि कुंभकर्ण के नाम से बना है, है ना। तो वहाँ पे उन्होंने मंदिरों के दर्शन किए, शिव क्षेत्र नामक पवित्र स्थान है वहाँ पर, वहाँ पर शिव जी का मंदिर है, 12 मंदिर हैं, विष्णु के 4 और ब्रह्मा जी का 1 मंदिर है वहाँ पर। और फिर वहाँ से शिव क्षेत्र नामक तीर्थ देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु पास पापनाशन तीर्थ आए, पापनाशन तीर्थ जो है वो कुंभकोणम से 8 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है ना, जिसका वर्णन प्रभुपाद जी बताते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पर आकर भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन किए और फिर अंत में वे श्री रंग क्षेत्र पहुँच गए ना, श्री रंगम में पहुँचे श्री चैतन्य महाप्रभु और वहाँ पर रंगनाथ जी के दर्शन किए और 4 महीने वहाँ पर अभी रुकेंगे, आगे इसका वर्णन आएगा है कि वहाँ पर काफ़ी 4 महीने चैतन्य महाप्रभु रुके और कई लीलाएँ किए, जिसका वर्णन अभी आगे इसी प्रसंग में आएगा। तो मैं यहीं पे विश्राम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की है? नाम बता दें, एक तो दैन्य बता दिया है ना, उसके बाद दूसरा है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का अर्थ है कि जो भी अपना है सब भगवान के चरणों में समर्पित करना है? और गोपतीर्थवरण कि इस सृष्टि में अगर कोई पालन करने वाला है तो केवल एक ही व्यक्ति है, वह है भगवान, और कोई पालन करता नहीं है ना। ये जानना बहुत जरूरी है, मतलब तो हम जानते हैं प्रभु जी केवल कृष्ण ही मेंटेनर है, जानने में और मानने में बहुत अंतर है ना। जानते हैं लेकिन ये नहीं सोचते नहीं मेरे पापा मेरे पालन है, लेकिन तो शरणागति में जो होता है जी तो सोचता है केवल कृष्ण ही मेरा पालन करते हैं और कोई नहीं, बाकी सब मीडियम है ना, बट वास्तव में कृष्ण ही पालन करते हैं। और गोपतृत्व वरण हो गया, अवश्य रक्षी भी कृष्ण विश्वास पालन, और पूरा विश्वास है कि मेरी रक्षा कृष्ण अवश्य करेंगे, इसका विश्वास भी होता है, केवल मानता ही नहीं है बल्कि उसको पूरा विश्वास है कि कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे किसी भी परिस्थिति में अगर मैं कृष्ण के शरण में रहूँगा तो, इसका पूर्ण विश्वास रहता है भक्त को, कभी डाउट नहीं करता है कि पता नहीं ठीक है कृष्ण पालनहार हैं पर पता नहीं मेरे केस में करेंगे कि नहीं करेंगे, ये डाउट नहीं रहता उसको, पूरा विश्वास है कि करेंगे, जरूर करेंगे, अवश्य रक्षा कृष्ण विश्वास करें। अब भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, और फिर भक्ति के प्रतिकूल, भक्ति अनुकूल जो है उसको स्वीकार करता है क्योंकि उसको विश्वास है कि अगर करूँगा तो भगवान रक्षा करेंगे, भक्ति के प्रतिकूल चीज़ों को रिजेक्ट करता है ना, क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से 6 लक्षण शरणागति के, उन्होंने दैनिक का थोड़ा सा चर्चा किया और अनुकूल का, बाकी चीज़ों का चर्चा नहीं करे। क्योंकि समय की सीमा। हाँ, वृंदावन में जाते हैं तो नए नए देवी देवताओं के मंदिर खोल रहे हैं, तो जा सकते हैं क्या, प्रश्न है। मंदिरों में नए नए जो मंदिर खुल रहे हैं, हर मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास कम टाइम होता है, उसमें पहले से ही जो फेमस मंदिर है हमारे आचार्य के, उसका दर्शन कीजिए। हर मंदिर में जाएंगे तो मेन जो भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाने का टाइम नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो जाते ही वहाँ पर जाते ही एक ही बार दंडवत प्रणाम, जैसे सुबह सुबह हम लोग कर लेते ना, वंशा कल्तव्य कृपा सिंधु वे हो चाहे पतिता नाम पाओ, तो जितने देवी देवता है प्रणाम कर लीजिए वहीं पे एक बार, आप सबको प्रणाम, जितने मंदिर हैं सबको एक साथ, है ना। अगर कोई छूट जाए तो बुरा ना माने, है ना, क्योंकि मैं टाइम कम है और है ना लाइक दैट। मेरे को कुछ है ना, हमारे इष्ट देव जो हैं उनके दर्शन करने हैं, है ना, इसी तरह से है ना करना चाहिए। हाँ, शिव जी क्षेत्रपाल हैं तो उनका दर्शन जरूर करना चाहिए अगर जा रहे हैं तो पहले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। आपका कुछ पूछना है?
हरे कृष्ण। आपने कहा कि शुद्ध भक्त की जो महाबल है चरण रेणु और चरण जल और उच्छिष्ट, ऐसे ही राजा रघुगण को जड़ भरत ने भी बताया था, पर थोड़ी सी उनकी अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, कैसे?
अवेलेबिलिटी हर जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब जब मंदिर में झाड़ू लगाते हो तो क्या होता है लास्ट में जो दूर लाता है वो क्या है? धूल तो कहीं भी मिल जाएगा।
क्लियरली कैसे?
झाड़ू लगाई गाँव में क्या कहते हैं, प्रभु जी अपना धूल दे दीजिए, थोड़ा सामने से थोड़े माना जाता है, जिसको प्राप्त करना होता है वो प्राप्त करता है। तो आप झाड़ू लगाइए, बहुत इकट्ठा हो जाएगा, वो सब सबके भक्तों की धूल मिला हुआ है उसमें, है कि नहीं। इसलिए मंदिर मार्जना दो, भक्तों मंदिर मार्जन करना चाहिए, उस धूल में है ना, हम लोग सोचते कपड़े गंदे हो जाएंगे, वो धूल है भगवान और उनके भक्तों के चरणों की धूल है, उसको धारण कर सकते हैं अपने मस्तक पर झाड़ू लगाकर। उच्छिष्ट कैसे धारण करें? कालिदास से सीखी। चैतन्य चरितामृत में कालिदास नाम के एक भक्त हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के, उनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे भक्तों का उच्छिष्ट है। इन्हीं की भक्त जबरदस्ती प्लेट से उठा लिया, बोलो देगा कि नहीं देगा, देना पड़ेगा, नहीं ऐसे नहीं। मतलब ये सब चीज़ इस तरह से करना चाहिए ताकि बेस्ट है कि किसी को पता ना चले कृष्ण के अलावा। कालिदास ने सबके उच्छिष्ट खाए और चैतन्य महाप्रभु कहते कि किसी को पता नहीं चलने दिया, है ना, किसी को पता नहीं चला कि कब खाया। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु को पता था कि ये भक्त जो है इतना विनम्र है, दैट इज द परफेक्शन ऑफ टेकिंग डस्ट। पता चल गया इसका मतलब है ना, इसका मतलब आपकी बड़ाई होगी, क्या ये भक्त कितना विनम्र है, देखो धूल लेता है सबके चरणों की, है ना, किसको पता नहीं चल रहा है, तो आपका पोटेंशियल लॉस हो गया, उस डस्ट का पोटेंशियल लॉस हो जाता है अगर पता चल गया, है ना। पर फिर भी जो महाजन हैं, गुरु हैं, उनके उच्छिष्ट तो हमें है ना लेना चाहिए, प्रमुख भक्तों के वो तो देते भी हैं उच्छिष्ट, अगर अच्छे से सेवा करते तो वो खुद ही दे देते, है कि नहीं, लाइक दैट। ठीक है, मुझे समय हो गया तो विराम देना पड़ेगा, बाकी पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्ण।